the consciousness is getting affected with external and internal environment factors. एनालिसिस मेथड्स जो हमने यूज करे उसमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड किया. इंटरप्रिटेशन में हमने पॉपुलेशन इफेक्ट्स को, सोशल इफेक्ट्स को, चेंजेस इन एनवायरमेंट्स और सब्जेक्टिव इफेक्ट को, इस तरह के चेंजेस को हमने ऑब्जर्व करके अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह की रिसर्च करके इस तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व किया और इंटरप्रेट करके कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए. तो सीधे आता हूं अपनी रिसर्च पर. जो स्पार्क में अभी सब लोगों को आपको पता होगा, पिछली बार की मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया था. हमने 64 चैनल ईईजी, जिसमें 24 बाइपोलर चैनल भी हैं, जिसकी हेल्प से हम ईसीजी यानी कि हार्ट रेट वेरिएशन को, जीएसआर यानी कि हमारे, जब भी आप देखेंगे कभी भय की स्थिति होती है तो भय की स्थिति में पसीना आता है, तो जो पसीना आता है और ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक चेंजेस. इन ऑटोनॉमिक चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए जिस यंत्र की जरूरत होती है, जिस मापांक की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस. तो ईसीजी माने कि एचआरवी, गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस और इस तरह के कुछ 4-5 और इंडाइसेस को लेके इस मशीन से हम रिसर्च कर सकते हैं. और इस मशीन के आने के बाद से करीब 35 रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, जिसमें सारे ऐसे भाई और बहनों का रिसर्च हमने इंक्लूड किया है जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष से ऊपर अवधि में मेडिटेशन को रेगुलर प्रैक्टिस किया है. ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं. एक एम्पलीफायर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ईजी कैप जिसको पहना के हम इसमें इस तरह इस जेल को फिल करते हैं ताकि ये हमारे सर से एक कनेक्शन डेवलप कर पाए. इस कनेक्शन के डेवलप करने के बाद हम उस पर ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं. और जब ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक ये जो डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है उसमें हम देख पाते हैं कि डेटा की क्वालिटी क्या है. सबसे बड़ी बात, जब हम ईजी रिकॉर्ड करते हैं तो ईजी रिकॉर्ड करने के मायने क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जरूरी है कि हम ईजी रिकॉर्ड करें. तो ईजी जो है वो एक डायरेक्ट ब्रेन एक्टिविटी होती है जो कि एक बहुत अच्छा और रिलायबल सोर्स होता है ब्रेन की एक्चुअल स्टेट को पता करने के लिए, ब्रेन के और माइंड के बीच में जो सिंक्रोनी है उसको पता करने के लिए. मोटर परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रिकॉल, अटेंशन एंड अलर्टनेस, इमोशन रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप क्वालिटी और कॉन्शियसनेस के अलग अलग इंडाइसेस जो हैं उसको पता करने के लिए हम ईजी डेटा को प्रोसेस करते हैं. एक दूसरी जो चीज है जो इस सिस्टम के साथ हमने ली है वो है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल सिस्टम, जिससे हम ईआरपी रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कि ईईजी जो है उसके लिए हम 10 मिनट या 15 मिनट का एक लंबा सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हैं, ईआरपी के लिए हमें मिलीसेकंड्स के सेगमेंट रिकॉर्ड करने होते हैं, यानी कि 100 मिलीसेकंड का एक सेगमेंट, 200 मिलीसेकंड का एक सेगमेंट या 500 मिलीसेकंड का एक सेगमेंट. अलग अलग लोगों ने जब कॉग्निशन पे काम करा और मेडिटेशन के इफेक्ट कॉग्निशन पे देखे तो उन्होंने पाया कि अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि प्लानिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज, इनमें बहुत फर्क आया. क्रिएटिविटी, मोटर कोऑर्डिनेशन भी कुछ इंडाइसेस थे जिसपे रिसर्च हुई. अब हमारे स्पार्क लैब के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उन मेजर ऑब्जेक्टिव्स में 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को लेके अभी हम काम कर रहे हैं. और पहला ऑब्जेक्टिव है साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ राजयोग मेडिटेशन एंड इट्स वैलिडेशन. तो जो हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग गुणों के अलग अलग गुणों को धारण करने के बाद, अलग अलग गुणों को सोचने के बाद जो हमारी मानसिक अवस्थाएं बनती हैं, उन मानसिक अवस्थाओं को ईईजी की हेल्प से एक सिग्नेचर अवस्था में डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, उनका वैलिडेशन कर पाए और अलग अलग तरह के जो इमोशनल स्टेट्स हमें उस दौरान महसूस होती हैं उनको हम वैलिडेट कर पाए और साथ में ये भी बता पाए कि किस तरह की पर्सनैलिटी जरूरी है या किस तरह के एक राजयोगा को शुरुआत करने के लिए या राजयोगा मेडिटेशन में एक्सेल करने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी की जरूरत है और क्या क्या भाव हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उस तरह की चीजें भी हम साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च की हेल्प से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेडिटेशन का इफेक्ट इमोशनल हेल्थ पर क्या हो सकता है, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इंडाइसेस में क्या हो सकता है, साथ में सोशल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, एक सोशल इंपैक्ट के लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, उसको भी हम साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस रिसर्च के जो क्वेश्चनर टूल्स हैं उसके बेसिस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, यानी कि 5 वर्ष या 10 वर्ष रेगुलर अभ्यास करते हैं, उससे हमारे ब्रेन में या हमारे बिहेवियर में क्या परिवर्तन आते हैं उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कम समय करने से क्या चेंजेस आते हैं या करने के जस्ट बाद करते समय क्या चेंजेस आते हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और क्या थ्रेशोल्ड रहेगा एक्टिव ब्रेन एक्टिवेशन का जो कि कॉग्निटिव इंडाइसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करने से फॉर एग्जांपल आपके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आते हैं, अगर सैनिक है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जो डोमेन है, जैसे मैंने बताया आपको मेरा डोमेन परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट है, तो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट करने के लिए उनका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेमेन वर्ड्स में माइंड स्टेबिलिटी का मतलब जब कॉग्निटिव प्रोसेस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद हम अपने जो भी अवस्थाएं आती जाती हैं उन अवस्थाओं को सुचारू रूप से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना कि रिएक्ट करते हैं। तो जब हम उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस रिस्पॉन्स से वो जो रिस्पॉन्स जनरेशन होता है वो रिस्पॉन्स जनरेशन से हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस होनी चाहिए, ऐसा हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जो करंट रिसर्च है उसमें हमने फिजियोलॉजी डेटा और साइकोलॉजी डेटा को मर्ज करके कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट जानने की कोशिश की। मैंने अपने पीएचडी के रिसर्च के दौरान भी इसी को करने की कोशिश की, जिससे हमने एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस और अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स, जिसमें कि हम कहते हैं कि किसी समय अगर हम एक अवस्था में बैठे हैं तो कितना ध्यान हम कर सकते हैं, उस ध्यान से अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कुछ किसी वस्तु या कोई किसी के बोलने से या किसी के सामने से निकलने से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद दोबारा वापस हम उस अवस्था में कितनी जल्दी आ पाते हैं, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। और साथ में ये डिसीजन मेकिंग करना कि हमारी जो अवस्था है उस अवस्था में हम कितनी देर तक रह सकते हैं और उस अवस्था को कितनी देर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स है इसके बारे में कुछ रिसर्च किया है। स्ट्रेस इंडेक्स, कॉग्निटिव कंट्रोल और पर्सनैलिटी इंडेक्स, ये कुछ तीन और चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी कुछ और रिसर्च प्रोटोकॉल बना रहे हैं, और इन रिसर्च प्रोटोकॉल के द्वारा हम इन चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे कि मेडिटेशन से इन चीजों पर, स्पेशली स्ट्रेस इंडेक्स पे, कॉग्निटिव कंट्रोल पे और पर्सनैलिटी इंडेक्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो करंट रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेडिटेशन स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन का एज अ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्या है, अलग अलग केस स्टडीज को लेके उनके इंटरव्यूज करना और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में लिखना, और साथ ही अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब करना। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसको हमने इस प्रोटोकॉल में लिया है, कूपर स्मिथ इन्वेंट्री, ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनेयर और स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स ऑफ वेलबींग, साथ में बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो कि 21 क्वेश्चंस का एक इंडेक्स क्वेश्चनेयर इंडेक्स होता है जिसको हमने लिया है, और साथ में पीजीआई हेल्थ क्वेश्चनेयर, सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्किल को भी हमने लिया है। ये सारे जो ये 6 स्केल्स हैं, इसको हर एक स्केल को भरने में करीब 1 से 2 मिनट और कुछ स्केल्स को भरने में थोड़ा समय, तो लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास का ये प्रोटोकॉल है जो कि साइकोलॉजिकल इंडाइसिस को पूरा करने के लिए। अब कुछ प्रीवियस रिसर्च जो हमने किया है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो रिसर्च हुआ है, डीआरडीओ के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, निमहेंस के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी सेंटर्स के द्वारा जो रिसर्च हुआ है उसके द्वारा कुछ ग्लिम्सेज हैं। इफेक्ट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स एंड केयर गिवर। आईएसआईसी करके एक संस्था है दिल्ली में वसंत कुंज में, जहां पर स्पाइनल इंजरीज के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। 2011 से यह हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें अलग अलग लेवल पर हमने कुछ चेंजेस देखे और वहां पर केयर गिवर्स को, पेशेंट्स को और साथ में हॉस्पिटल के स्टाफ को मेडिटेशन का ज्ञान दिया गया और राजयोग का कोर्स कराया गया। 7 डे कोर्स कराने के बाद उसके फॉलोअप्स लिए गए और रेगुलर इस चीज के फॉलोअप्स लिए गए और उसके पश्चात हमने क्वेश्चनेयर्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा और फीडबैक फॉर्म्स के द्वारा इसके प्रभावों को जांचने की कोशिश की। जो हमें रिजल्ट्स मिले उसमें हमने देखा कि सफरिंग जो था, जो रोग का जो प्रभाव था, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जो दर्द होता था, उस दर्द की वजह से जो परेशानियां होती थी पेशेंट्स को, वो कम हुई और साथ में पेशेंट को देखते हुए जो भावों में परिवर्तन होता है केयर टेकर्स में, स्पेशली जब आप देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को तो हम ट्रीट करने की कोशिश हमेशा करते हैं डॉक्टर्स, केयर गिवर्स को ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो केयर गिवर्स को यहां पर ट्रीटमेंट नहीं बट एक मेडिटेशन इंटरवेंशन दिया गया और ये देखा गया कि केयर गिवर्स के होप स्केल में, उनके बिलीफ में, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स में और उनके सेटिस्फेक्शन में क्या चेंजेस आए। तो इन सारे स्केल्स में हमने देखा कि हमने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पाए और एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी बात थी जो हमने देखी इसमें। दूसरा रिसर्च जो रजनीकांत भाई ने निमहेंस में किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत नोवल टेक्निक को यूज करते हुए, जो कि बिल्कुल बहुत ही एक्सेप्शनल टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं ईईजी एफएमआरआई। ये दो टेक्निकों का मिश्रण है जिसमें हम ईईजी, जो जैसे हम यहां पर ईईजी करते हैं, उस ईईजी के साथ में एफएमआरआई मतलब फंक्शनल एमआरआई को डेमोन्स्ट्रेट करके हम साथ में देखते हैं कि